हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। बहुत बुरे हैं आप, थोड़ी देर भी आपसे सब्र नहीं किया जाता। आ रही थी ना मैं, कुछ जरूरी बात कर रही थी, उसके बाद आ ही जाती यहाँ। पर नहीं, आपसे जरा इंतजार नहीं किया जाता, हमेशा जल्दी के घोड़े पर सवार रहते हैं, ये भी नहीं सोचते कि सामने वाला कहीं बिजी भी हो सकता है, तो इंसानों जैसा थोड़ा इंतजारी कर ले, बस उसके सर पर सवार हो जाते हैं। धृति कमरे में कदम रखते ही साथ गुस्से से फट पड़ी। उसने आव देखा न ताव, धाएं धाएं करके एक के बाद एक गोलियां अर्णव पर दागने लगी, और बेचारा अर्णव फटी आंखों से भौचक्का सा उसे देखता ही रह गया। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया तुम्हें? आते ही मुझ पर इतना भड़क क्यों रही हो तुम? ऐसा भी क्या कर दिया मैंने कि कमरे में कदम रखते ही साथ तुमने मुझे दुश्मन देश समझकर गोलीबारी शुरू कर दी? पहले इस मासूम को उसका गुनाह तो बता दो कि आखिर उस पर यह हमला उसकी किस गलती की सजा के रूप में किया जा रहा है। अर्णव ने मासूम से सूरत बनाई और आंखें बड़ी बड़ी हैरान परेशान सा उसे देखने लगा। उसकी बातें सुनकर गुस्से से आग का गोला बनी धृति सर से लेकर पैर तक सुलग उठी और जलती निगाहों से उसे घूरने लगी। ज्यादा शरीफ तो बनिए मत आप, आपकी सब चालाकी जानती हूं मैं। अरे, पर मुझे सच में नहीं पता कि अभी तुम मेरी किस बात पर इतनी नाराज हो। क्यों बुलाया था आपने मुझे यहाँ कमरे में? और जब बुला ही लिया था तो थोड़ा सब्र ही कर लेते। क्या जरूरत थी आपको फोन करके अपना उतावलापन दिखाने की? वो भी एक बार नहीं, नॉनस्टॉप फोन पर फोन किए जा रहे हैं। आपके कारण पहले माधुरी ने मुझे छेड़ा, फिर निहारिका भी आपका नाम लेकर मुझे टीज करने लगी। उसके सामने कितनी शर्मिंदा हो गई थी मैं। अगर आपकी ऐसी ही हरकतें रही ना, तो आप मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। गुस्से से बौखलाई धृति एक बार फिर उस पर भड़क उठी, जबकि अर्णव बिल्कुल शांत और पूरी तरह से बेफिक्र नजर आ रहा था। उसने बड़े ही एटीट्यूड के साथ अपने पैरों को क्रॉस किया और सीना तानकर बैठ गया। देखिए मैडम, जो इल्ज़ाम आपने हम पर लगाए वो सरासर बेबुनियाद है, और इस नाराज़गी व गुस्से की असली हकदार मैं नहीं, आप खुद हैं, क्योंकि मैंने तो बड़ी ही शराफत के साथ आपको पैगाम भिजवाया था कि कमरे में आइए। अगर आपको वक्त लगाना था तो ये बात आपको मुझे इन्फॉर्म करनी चाहिए थी। मैंने तो इंतज़ार किया था, और जब मुझे खबर मिली कि आपने आने से मना कर दिया है, उसके बाद जाकर मैंने आपको फ़ोन किया था। तब भी गलती आपकी तरफ से हुई कि आपने मेरी कॉल रिसीव नहीं की और मुझे दोबारा फ़ोन करने पर मजबूर किया। रही बात माधुरी और निहारिका के आपको छेड़ने की, तो वो तो आपकी प्रॉब्लम है, जिससे कैसे निपटना है ये तो आपको सोचना होगा। अब आते हैं आपकी सबसे आखिरी शिकायत पर, कि मेरे उतावलेपन के कारण आपके शर्मिंदा होने की। तो मैं आपका कोई लवर तो हूँ नहीं, और ना ही आप छुपकर अपने किसी आशिक से इश्क फरमाने जा रही हैं जो आपको शर्मिंदा होना पड़े। जहाँ तक मुझे पता है, अपने पति से मिलना तो कोई क्राइम नहीं होता, और ना ही अपनी लीगली वेडेड वाइफ को अपने कमरे में बुलाना, उसके साथ अकेले में कुछ वक्त बिताने की चाहत रखना, उसे कॉल करना कोई क्राइम है, और जब गुनाह नहीं तो शर्मिंदगी कैसी? अर्णव ने बड़ी ही चालाकी से बातों को कुछ इस तरह घुमाया कि धृति फटी आंखों से अचंभित सी इसे देखती ही रह गई। अंत में उसने नाक से कोरते हुए मुंह बना लिया और चिढ़ते हुए बोली, बहुत बुरे हैं आप, और चालाक भी बहुत हैं। हर बात को अपने फेवर में घुमाकर मुझे ही गलत साबित कर देते हैं। ये तो हमारा स्पेशल टैलेंट है, सबके बस की बात कहाँ होती है, लोगों के दिमाग के साथ खेलना और हर परिस्थिति को अपने फेवर में मोड़ लेना। अर्णव ने अकड़ते हुए अपनी तारीफ की, जिसे सुनकर धृति और ज्यादा खींच उठी। हाँ, तभी तो मैं कहती हूँ कि आप बहुत ही चालू और चंट चपड़ आदमी हैं, बातों में तो आपका कोई तोड़ नहीं। मैं बेचारी मासूम, जाने कहाँ से आप जैसे शातिर आदमी के चंगुल में फंस गई। धृति ने मुंह ऐंठते हुए उदास मासूम सूरत बनाई, वहीं उसकी ये नौटंकी देखकर अर्णव ने तुरंत ही उसे टोक दिया। रहने दो, मासूम तो अब तुम भी नहीं रही हो, चलता फिरता ज्वालामुखी बन गई हो। बस मौका मिलना चाहिए तुम्हें, और तुम मुझ पर आग के गोले बरसाने शुरू कर दो, और रुकने का नाम भी ना लो। तो आपकी हरकतें ही गुस्सा दिलाती हैं मुझे, वरना मैं तो बहुत शांत और स्वीट सी लड़की हूँ। रहने दो धृति, इतना भी झूठ मत कहो कि कल को भगवान को अपना चेहरा दिखाने में भी शर्म आई तुम्हें। व्यंग्य भरी निगाहों से धृति को देखते हुए अर्णव ने उस पर तंस कसा। उसकी बात सुनकर धृति का मुंह हैरानी से खुल गया। अगले ही पल उसका गोरा मुखड़ा गुस्से से जल उठा। आप कहना क्या चाहते हैं, मैं एक नंबर की झूठी हूँ? मैंने तो कुछ नहीं कहा, तुम खुद कह रही हो तो सच ही होगा, अर्णव ने जानकर बेफिक्री भरे अंदाज में जवाब दिया, और धृति उसका ये जवाब सुनकर सर से लेकर पैर तक सुलग उठी। अर्णव जी, अब आपका बहुत ज्यादा हो रहा है, देखो कितनी जल्दी गुस्सा आ गया तुम्हें। बस तुम्हारा बस नहीं चल रहा, वरना अभी तुम मुझे कच्चा ही चबा जाती। अब बताओ, स्वीट और इनोसेंट लड़की ऐसी होती है? मौके पर चौका नहीं, सीधे छक्का दे मारा था उसने, और लबों पर कुटिल मुस्कान सजाए बौहें उठाते हुए उसे देखने लगा था। धृति ने खींचते हुए अपनी मुट्ठियों को भींच लिया और तीखी जलती निगाहों से अर्णव को घूरने लगी। अब अगर गुस्सा करके मन भर गया हो, मुझे घूरने से आत्मा को शांति पड़ गई हो, मुझसे लड़कर और मुझ पर चिल्लाकर अपने दिल की सारी भड़ास मुझ पर निकालकर चैन मिल गया हो, तो इधर आओ मेरे पास। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ मैं, पर तुम्हें मेरी जरा भी परवाह ही नहीं। लो जी, महाराज ने उसे गुस्सा भी खुद ही दिलाया और अब पीड़ित बनकर शिकायत भी वही कर रहा था। ध्रुति अब भी खामोशी से तीखी निगाहों से उसे घूर रही थी। अर्नव ने गहरी सांस छोड़ी और बेबसी व अफसोस से सर हिलाते हुए खुद ही बेड पर से उतरते हुए उसकी ओर कदम बढ़ा दिए। शांत मेरी झांसी की रानी, इतनी लड़ाई कर तो ली मुझसे, अब क्या सारी रात इसी में निकाल दोगी? अर्नव ने प्यार से उसके गाल को सहलाया। आंखों में मोहब्बत लिए वो अब उसके साथ काफी नरमी से पेश आ रहा था, जिससे धृति का गुस्सा भी कुछ शांत हुआ, पर नाराजगी जस की तस ही बनी रही। मतलब बस मैं ही लड़ाई कर रही थी, आप तो फूल बरसा रहे थे ना मुझ पर? धृति ने नाराजगी से गालों को फुलाया और उसका ये अंदाज देखकर अर्नव मुस्कुरा उठा। मैं तो बस तुम्हें चिढ़ा रहा था, तुम्हें थोड़ा सा प्रोवोक कर रहा था, और तुम तो मेरे तीली लगाते ही आलू बम जैसे फट पड़ी। पहले तो क्यूट सी फुलझड़ी हुआ करती थी, पर इन 3 साल की दूरियों में चलता फिरता एटम बम बन गई हो। पहले कितनी स्वीट सी थी, पर अब तुम्हारा टेम्पर बिल्कुल खराब हो गया है। ऐसा लगता है जैसे मेरा गुस्सा तुम्हारे अंदर चला गया है। बिल्कुल मेरे जैसे बिहेव करने लगी हो तुम। जरा सी बात पर भड़क जाती हो, भिड़ भिड़ कर लड़ती हो मुझसे, मजाक करूं तब भी चिढ़ जाती हो, और अभी भी लड़ाई की शुरुआत तुमने की थी, याद नहीं आता कि तुमने कैसे चिल्लाना शुरू कर दिया था। अर्नव का लहजा अब भी नर्म था और चेहरे पर कोमल भाव मौजूद थे। अर्नव की बातें सुनकर अब धृति ने अपने व्यवहार पर गौर किया। सारा गुस्सा अब शांत हो चुका था। आपके जैसी चिड़चिड़ी हो गई हूं ना मैं, आपने बिगाड़ दिया है मुझे, अपने जैसा गुस्सैल बना लिया है। आप इतना तंग करते हैं मुझे कि मेरी टॉलरेंस पावर बिल्कुल जीरो हो गई है। अगर ऐसा रहा तो हमारी तो लड़ाई ही होती रहेगी। मुझे अब अपने गुस्से पर काम करना होगा, पर आप भी मुझे कम परेशान किया कीजिए। सारा ब्लेम अर्नव पर डालने के बाद उसने शिकायत भरी निगाहों से उसे घूरा और मुंह बना लिया। अर्नव बेचारा आंखें फाड़े हैरान परेशान सा उसे देखता ही रह गया। अब मैंने तुम्हें कब परेशान किया? आप शाम को ही मिले थे ना मुझसे, फिर मुझे अभी रात में यहाँ मिलने के लिए क्यों बुलाया? सब क्या सोच रहे होंगे?
धृति ने तुनकते हुए इतना कहा और खामोश हो गई। अर्नव के चेहरे के भाव अब बदल गए। उसने गहरी इंटेंस निगाहों से उसे देखा और भौं उठाते हुए सवाल किया, क्या सोच रहे होंगे? धृति ने कातर निगाहों से उसे देखा, फिर निगाहें फेरते हुए धीमे स्वर में बोली, यहाँ अकेले बंद कमरे में रात के इस वक्त पति पत्नी के बीच क्या होने की संभावना हो सकती है? मुझे तो नहीं पता, तुम बताओ, क्योंकि मैंने तो तुम्हें यहाँ सिर्फ तुम्हारे साथ कुछ वक्त अकेले में बिताने और कुछ बातें करने के लिए बुलाया था। इसके अलावा तो कोई उल्टा सीधा ख्याल मेरे मन में आया ही नहीं। अर्नव बिल्कुल ही अनजान बनने की कोशिश कर रहा था। धृति ने बेचैनी से अपनी हाथ की उंगलियों को आपस में उलझाया और निगाहें जमीन पर गड़ा ली। उसे खामोश देखकर अर्नव उसके थोड़ा करीब आया और उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भरते हुए उसे अपने सामने कर लिया। टू बी कंटिन्यूड।